Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Baruch,
भृगु कच्छ पुराना तीर्थ स्थान नर्मदा के तट पे, वहाँ आप सब लोग भाग्यशाली भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसे देवताओं में जैसे हरि है, नदियों में गंगा है, वैष्णवों में भगवान शंभू है, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत है, ये भागवत में उल्लेख है। तो भागवत का अर्थ होता है भगवान के समान, अथवा जिसके अंदर भगवान की जानकारी हो उसको भागवत कहते हैं। भागवत में क्या है? भगवान की जानकारी है, भगवान को जानने की विद्या है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। वृक्ष को तो सब जानते हैं, वृक्ष कल्प कहते हैं, कल्पना इच्छा, जो इच्छा करो वो पूरी होती है। भागवत कल्प वृक्ष है, तो जब कोई वृक्ष होते हैं तो फिर उसके मोटी मोटी शाखाएं होनी चाहिए। तो भागवत रूपी वृक्ष के 12 मोटी मोटी शाखाएं हैं, उसको स्कंद बोलते हैं। 12 स्कंद हैं, स्कंद का मतलब मोटी मोटी शाखाएं भागवत की। 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वरूप है। भागवत क्या है? भागवत है श्री कृष्णेर अंग। भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है, स्वरूप है। पहला स्कंद आप पढ़ रहे हैं जो अभी, और दूसरा स्कंद ये भगवान के चरण कमल हैं। इन दोनों को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मनोहर मुख है, दसम स्कंद। तो एक एक स्कंद को श्रीमद् भागवत के भगवान श्री कृष्ण के अंग को माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। ऐसे भागवत में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पहले स्कंद में, 5-7 दिनों के बाद प्रवचन में आएगा कि 6 प्रश्न पूछेंगे नैमिषारण्य में ऋषि। ये नैमिषारण्य कहाँ है? नैमिषारण्य लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अभी भी स्थान है, उसको चक्कर तीर्थ कहते हैं। वहाँ श्रीमद् भागवत का 88,000 ऋषियों ने, जिनका नेता था शौनक ऋषि जो भृगु वंश का था, उसने सूत गोस्वामी से भागवत सुनी थी। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे, उसमें 6ठा प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम चले गए इस धरती से, तो धर्म ने किसका शरण लिया? भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका शरण लिया? उसके उत्तर में भागवत में कहा गया है, श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ज्ञान आदि भागवत के रूप में प्रकट हुआ, भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण गए और एक तरफ भागवत प्रकट हुआ, तो भागवत भगवान श्री कृष्ण के समान है। भागवत पृथ्वी के ऊपर पहली बार सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को सुनाया गया और वो 7 दिन में सुनाया गया और जिस स्थान के ऊपर सुनाया गया उसका नाम है सुकताल। सुकताल अभी भी हरिद्वार जाते हुए मुजफ्फरनगर से 28-30 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो गंगा के तट के ऊपर सुकताल का स्थान है जहाँ महाराज परीक्षित, उधर ही हस्तनापुर था, तो वहाँ पहली बार श्रीमद् भागवत सुनाया गया था सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। उसके बाद भागवत का दोबारा श्रवण गोकर्ण ने किया अपने भाई दुंधकारी के उद्धार के लिए और फिर तीसरी बार ये भागवत सूत गोस्वामी सुना रहे हैं सनक आदि ऋषियों को। तो पहला स्कंद आप सब चर्चा उसकी कर रहे हैं, पहले स्कंद की। पहले स्कंद में पहले 3 को मंगलाचरण बोलते हैं। कोई भी जो रचिता होता है वो मंगलाचरण करता है अपने काम शुरू करने से पहले। मंगलाचरण का अर्थ होता है, 3 उद्देश्य होते हैं मंगलाचरण के। मंगलाचरण के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इष्ट देव की प्रार्थना, जो अपना इष्ट है उसको प्रार्थना करनी है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं ये निर्विघ्न समापन हो। तो पहला मंगलाचरण का उद्देश्य होता है इष्ट प्रार्थना। दूसरा मंगलाचरण का उद्देश्य होता है विषय वस्तु, इस ग्रंथ के अंदर मैं कौन सी विषय वस्तु का वर्णन करूंगा, वो स्वयं उसका रचयिता बोलेगा तभी समझ में आएगा। और तीसरा मंगलाचरण का उद्देश्य होता है आशीर्वाद या श्रुति फल, कि इसके पाठ करने से पाठ करने वाले को, सुनने वाले को क्या फल मिलेगा। तो मंगलाचरण के ये 3 उद्देश्य होते हैं और 3 श्रीमद् भागवत के पहले मंगलाचरण है और 19 अध्याय इस पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, छोटा स्कंद है वैसे 19 अध्याय हैं। इन 19 अध्यायों में 3 प्रसंग हैं, 3 सुनने वाले और सुनाने वाले हैं, श्रोता और वक्ता 3 हैं। पहले 3 अध्यायों में सुनाने वाला सूत गोस्वामी है। सूत गोस्वामी आप सब हमेशा पढ़ते हैं, किसको कहते हैं सूत? सूत किसी आदमी का नाम नहीं है, जाति का नाम है। सूत जाति होती है। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर ले तो उसको सूत बोलते हैं, अथवा क्षत्रिय कभी ब्राह्मणी से शादी कर ले तो उसको भी सूत बोलते हैं। एक अनुलोम सूत होता है, दूसरा विलोम सूत होता है। इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता है लेकिन ये पुराणों का ही केवल प्रचार करते हैं। तो ये सूत गोस्वामी जो अभी भागवत कह रहा है ये सुखदेव महाराज का शिष्य है। इसका पिताजी रोम हर्षण सूत व्यासदेव के शिष्य थे, जिसको सब पुराण व्यासदेव ने सिखाए थे। ये उनका बेटा है, उग्र सर्वा इसका नाम है। तो सूत गोस्वामी उग्र सर्वा कथा कर रहा है और सनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। ये 3 अध्यायों में वर्णन है पहले। दूसरे 3 अध्यायों में वर्णन है नारद बोल रहा है और व्यासदेव सुन रहा है। नारद भगवान का अवतार है और व्यासदेव भी भगवान का अवतार है और दोनों भागवत का श्रोता और वक्ता है 3 अध्यायों में। और उसके बाद 13 अध्याय बचते हैं, 19 में से 6 अध्याय तो ये गए, 13 अध्यायों में 12 अध्यायों में सुनने वाले परीक्षित की महिमा है कि परीक्षित कितना महान था, उसका कुल, उसकी मातृकुल और पितृकुल का वर्णन है। कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, ये मातृकुल के वर्णन है। पितृकुल में भीष्म पितामह, पांडव, धृतराष्ट्र आदि सबका वर्णन है कि इतना बड़ा महान परीक्षित महाराज था, उसके जन्म, उसकी कलयुग के ऊपर विजय, इस सब का वर्णन 12 अध्यायों में। एक अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कितने महान वक्ता थे उसका वर्णन है। ऐसे ये 19 अध्याय पूरे होते हैं। तीनों श्रोता और वक्ताओं में सबसे उच्च कोटि का श्रोता परीक्षित महाराज, जिसने भागवत केवल भगवान प्राप्ति के लिए सुनी थी और कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए कहते हैं नवदा भक्ति में केवल श्रवण से परीक्षित महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, केवल सुनने से। और कीर्तन भक्ति का उदाहरण सुखदेव गोस्वामी है, केवल भागवत कथा करने से भगवत धाम को प्राप्त किया अथवा भगवत भक्ति उनको मिली। तो ये दोनों श्रोता और वक्ता, दी श्रोता और वक्ता भागवत के ये है। सनक आदि ऋषि कथा कैसे सुनते थे? यज्ञ करते थे सुबह शाम को, यज्ञ से जब फारिग हो जाते थे, टाइम मिलता था तो बैठ के शाम को कहते अब कथा सुनाओ। तो उनका कथा सुनना मुख्य उद्देश्य नहीं था, वो तो यज्ञ का, स्वयं कहते हैं कि यज्ञ करते करते यज्ञ के दुहे से हमारा सब कुछ बाहर अंदर काला हो गया, लेकिन कुछ कलयुग के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप कोई ऐसा रास्ता बताइए कि कलयुग के लोगों का उद्धार हो। तो ये श्रोता जो थे वो लोक कल्याण के लिए कुछ करना चाह रहे थे, और यज्ञ उनका मुख्य काम था और कथा सुनना उसका गौण भाव था, और सुनाने वाला सूत था और सुनने वाले ऋषि थे। तो ये भी एक बड़ा भेद था कि सुनाने वाला पौराण की कथा कह सकता है, वेद नहीं कर सकता, और वो सब वेदज्ञ थे। दूसरे श्रोता व्यासदेव है, जिसने वेदों का सारा वर्णन कर दिया, एक वेद को चार में विभाजन कर दिया, चार वेदों को समझाने के लिए उपनिषद लिखे, ब्राह्मण लिखे, 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखी। महाभारत कैसे लिखी? महाभारत के अंदर सारे उपनिषदों का सार गीता रख दिया। अब गीता उपनिषद और वेद, वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, वेद केवल द्विज पढ़ सकता है जो गुरु के आश्रम में जाए और गुरु से शिक्षा ग्रहण करे, यज्ञोपवीतधारण करे, फिर वेद पढ़ सकता है। अब वेद स्त्री नहीं पढ़ पाती है, वैश्य शूद्र आदि वैश्य नहीं पढ़ सकते हैं वेद, तो इसलिए इन सब लोगों के लिए वेदों का सार महाभारत के अंदर भगवद गीता के रूप में रख दिया। ये एक बहुत बड़ी विशेष व्यासदेव की दृष्टिकोण था कि सब लोगों को वेदों का सार भगवद गीता पढ़ने का अधिकार है। भगवद गीता स्त्री भी पढ़ सकती है लेकिन वेद नहीं पढ़ सकती, तो ये बहुत बड़ी कृपा करके वेद व्यास ने महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता रख दी, जिसके पढ़ने का अधिकार सबको दे दिया। फिर भी असंतुष्ट रहे। आप लोगों में से जो भी कोई बद्रिक आश्रम गए हैं तो बद्रिक आश्रम से ऊपर 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर व्यासदेव की गुफा है ऊपर, और वहाँ नीचे सरस्वती बहती है। सरस्वती के तट के ऊपर व्यासदेव सुबह चिंता में बैठे थे कि इतना वेद पुराण लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उस वक्त नारद जी वहाँ उनके गुरु प्रकट हुए, नारद जी का स्वागत किया और नारद जी ने कहा कि वेदों के अंदर आपने इतना कर्म कांड लिखा है और स्वर्ग का इतना वर्णन किया है, इसलिए लोग भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं पाएंगे, क्या करना चाहिए गुरु जी बताइए। तब नारद ने कहा, नारद भक्ति का आचार्य है, व्यासदेव वेदों का आचार्य है, वेदों का आचार्य वेदों के ही कर्म कांड में उलझ गया, इसलिए भक्ति आचार्य नारद ने उनको श्रीमद् भागवत भगवान की महिमा के वर्णन का संकेत और आदेश और निर्देश किया। तो यहाँ भी श्रोता और वक्ता दोनों उच्च कोटि के होते हुए भी उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं था, वैसे भगवान के अवतार ही थे, लेकिन विशेष सुखदेव गोस्वामी भागवत केवल आनंद भगवत आनंद के लिए ही कहते थे, उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। और परीक्षित महाराज ने भागवत सुना ही सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए था। तो इसलिए भागवत के ये तीन श्रोता और वक्ताओं की लिस्ट में मुख्य वक्ता सुखदेव गोस्वामी हैं और मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज। तो मंगलाचरण में भी पहले श्लोक को आपने पढ़ा है, उस पहले श्लोक में पहला शब्द है जन्मादि अस्य। ये जन्मादि अस्य वेदांत सूत्र का शब्द है, लेकिन उसमें अथ होता है, इसमें अथ नहीं है, क्योंकि वेदांत सूत्र सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन भागवत सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया व्यासदेव ने, इसलिए वेदांत सूत्र को रखा अथ निकालकर। इसमें गायत्री है धीमहि, लेकिन ये गायत्री जपने का अधिकार स्त्री को भी है, वो नहीं, स्त्री को जनेऊ नहीं होता है, मालूम है माता जी? और जनेऊ गायत्री मंत्र जब दिया जाता है तभी पहना जाता है, लेकिन इसमें गायत्री है। पहले श्लोक मंगलाचरण में गायत्री है, ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य है उस इष्ट देव की आराधना करते हैं। दूसरे श्लोक में विषय वस्तु है, क्या है भागवत में विषय वस्तु क्या है? शिवदम सबका मंगल करने वाला है, क्या लाभ करेगा? ताप त्रय उन्मूलनम, संसार के दुख ताप तीन जो है उनको जड़ से निकाल के फेंक देगा। महामुनि व्यासदेव के द्वारा इसकी रचना की गई है, और किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा था उसी ने उसके ऊपर टीका के रूप में भागवत को लिख दिया। और ये आज का श्लोक जो हम पढ़ेंगे, ये मंगलाचरण का श्लोक, ये भी भागवत की महिमा है और हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने के लिए व्यासदेव हमको प्रेरणा देते हैं कि आप भागवत का रस आस्वादन करो। तो आज के श्लोक को आइए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, आप भी हमारे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। निगम कलपत्रो, बोलिए, गलितम फलम सुक मुखारविं अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहर रसिका भुवि भावुकाः। भुवि कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर रहने वालों को, हम सबको व्यासदेव कह रहे हैं हे पृथ्वी के ऊपर रहने वाले कौन? भावुका। भावुका मतलब जो भाव में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान लोग हैं। भावुका का अर्थ लिखा है विचारवान, पटु तथा विचारवान, मतलब जो इस संसार में पृथ्वी के ऊपर दुख और तकलीफ के बचकर भगवान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं विचारवान लोग। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले विचारवान लोगों क्या करो? मुहुर रहो, बार बार पियो, भागवत के रस को बार बार पियो। मुहु अहो रसिक, हे रसिको, रस का रस आस्वादन करने वालों, विचारवान, इस भागवत के रस को पियो। कब तक पिए? तब कहते हैं आलयम। आलयम का अर्थ है जब तक संसार के बंधन से मुक्त न हो जाए तब तक पीते रहो। आलयम का अर्थ है जब तक मुक्त न हो तब तक पीते रहो, और मुक्त हो जाने के बाद भी पीते रहो। कैसा है ये भागवत का रस? रसम, ये रसमय, जिसको पिया जाता है। ये कैसे पिया जाएगा भागवत? कानों के द्वारा। इसके पीने के लिए एक्स्ट्रा डाल के मुंह से नहीं पीते हैं, ये कान से पीने का रस है। ये जो रस है भागवत का, इसको पीने का प्याला कौन सा है? कान। कान के द्वारा भागवत के रस को पियो। ये कौन सा रस है भागवत का? तब कहते हैं निगम। निगम का अर्थ होता है वेद। जहां निगम कहते हैं वेद को, जहां सबकी पहुंच न हो, वेद भगवान तक पहुंचा देता है, हम अपने आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वेद का अर्थ है निगम। निगम का अर्थ है वेद। वेद कैसा है? कल्पत्रु। कल्प इच्छा, कल्प मतलब इच्छा है, कल्पना, और तरु मतलब वृक्ष। वेद कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत क्या है? फलम, फल है भाई। वृक्ष में मुख्य चीज क्या होती है? आप वृक्ष लगाएंगे तो काय के लिए लगाएंगे? फल के लिए। तो भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। कैसा फल है? फल कैसा है? गलितम। गलितम का अर्थ है पका हुआ। कौन सा पका हुआ? जो पेड़ के ऊपर पकता है। एक तो कच्चा उतार के फिर कार्बाइड क्या डालते हैं बोरी में डाल के पकाते हैं, वो टेस्ट नहीं होता है उसमें। वो देखने में पका लगता है लेकिन अंदर में खट्टा होता है आम, ना ऐसे ना। ये कैसा है पका हुआ फल? गलितम, पक गया है। कहां? पेड़ के अंदर। तो क्या ऊपर से गिर गया पक के? बोला नहीं नहीं, गिरा नहीं, इसको उतारा गया है ऊपर से। एक आदमी ने हाथ से लिया, दूसरे आदमी के हाथ में दिया, दूसरे ने तीसरे के हाथ में दिया, ऐसे ये धरती के ऊपर आया। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वृक्ष में ही पका है और इसको भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्यः, ये पहला श्लोक है भागवत का। ये भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के हृदय में इसका संचार किया चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में, और ब्रह्मा जी ने ये नारद को दिया, नारद ने ये व्यास को दिया, और व्यास ने अपने बेटे सुखदेव को दिया। तो ये फल ऊपर से गिरा नहीं है। पका हुआ फल गिरेगा तो फट जाएगा, तो इसको गिरा नहीं है, बिखरा नहीं है। इसको बड़ी सावधानी से रसिकों ने उतार के एक को दूसरे के हाथ में दिया है। इसको परंपरा बोलते हैं। कैसा फल है ये? गलितम फलम। और मीठा हो गया। कैसे मीठा हो गया? सुख मुखाद। सुख का अर्थ होता है वैसे तोता। तोता होता है ना, उसकी लाल चोंच किसी फल में लग जाए तो फल और मीठा हो जाता है। एक तो फल पहले से मीठा था और फिर तोते, सुखदेव रूपी तोते ने उसको जो चूंच मार दी अथवा उसके मुख से जैसे ये निकला तो और मीठा हो गया, बहुत स्वाद। कैसा हो गया? द्रव्य। द्रव्य का मतलब फल चाकू से काट के टुकड़े करने की जरूरत नहीं। आपने देखा, एक तो आम काटते हैं, एक बच्चे देखे ऐसे करके इसको थोड़ा हिलाते हैं, फिर उसके अंदर सारा रस बन जाता है अपने आप, और फिर पीना शुरू करते हैं सीधा। ऐसे आम पिया जाता है ना, डायरेक्ट आम को आम से पिया जाता है, लेकिन खाल फेंकनी पड़ती है और उसके अंदर से गुठली होगी वो भी फेंकनी पड़ेगी। लेकिन भागवत का फल ऐसा है, ना खाल है ना गुठली है, पूरे का पूरा पी जाओ और कुछ नीचे गिरे बगा भी नहीं, हाथ भी खराब नहीं हो। ये ऐसा फल है। द्रव्य संयुक्त, बहुत संयुक्त है। संयुक्त का मतलब बहुत सुंदर है, बहुत विशेष फल है। ये संयुक्त का अर्थ लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, संयुक्तम सभी प्रकार से पूर्ण, और द्रव्यतम, द्रव्य तो इसको कहते हैं, द्रव्य का मतलब जो चीज बहे जल की तरह, धारा में दूध की तरह, उसको द्रव्य कहते हैं। तो ये भागवत क्या है? ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और फल भी ऐसा है जिसमें न गुदा है न छिलका है, और ये रसमय है। और इसको सुखदेव गोस्वामी, इसको रचा किसने, इसको संग्रह किसने किया? व्यास देव ने। किसके आदेश थे? नारद जी के आदेश थे। लेकिन पहली बार इसको बोला किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। और विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी ने सब लोगों के लिए हितकारी इसको बोला। उनके बोलने की कला ये थी कि जब सुखदेव के मुख से निकले तो उनके सामने बैठे हुए सुनने वाले सब प्रकार के महात्मा थे, तो उन्होंने ऐसे भागवत को उनके सामने प्रस्तुत किया कि सबकी उसमें रुचि होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले भी, जो भगवान के धाम जाने वाले भी, भगवान को ज्ञान से जानने वाले भी, सब जितने भी बैठे हुए थे उन सब को उसमें रुचि होने लगी। ये सुखदेव के विशेष रूप से प्रस्तुति का विशेषता है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? हे, पहले तो जो अंतिम शब्द है भूवि भाव कहा, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले विचारवान लोगों, आप भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जिसको सुखदेव गोस्वामी के मुख से और रसमय हो गया है उसको पियो। और कब तक पियो? जब तक जीते हो तब तक पियो, और मुक्त होने के बाद भी इसका रस आनंद लेते रहो। ये इस श्लोक का अर्थ। तो इसमें व्यासदेव हमको भागवत की महिमा बता रहे हैं कि भागवत फल है वेदों का। इसका अर्थ, वेदों में बहुत से पत्ते भी होंगे, टहनियाँ होंगी, टालियाँ होंगी, कच्चे फल भी होंगे, लेकिन ये पका हुआ फल है। इसलिए वेदों को लिखने के बाद वेदांत सूत्र लिखा और उसी के ऊपर भागवत रूपी अपनी टिप्पणी व्यासदेव ने स्वयं ने लिख दी। इसलिए वेदांत के ऊपर टिप्पणी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी को। तो ये विशेषता इसकी है। तो आइए इसका अर्थ श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ पढ़ते हैं। हे विज्ञ एवं भावक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है, अतएव ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जीवों के लिए पहले से आस्वाद्य था। ये पहले जो भगवान के यहाँ इसके लिखने का अर्थ, ये लास्ट आखिरी जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सुखदेव गोस्वामी जो था ना, वो जन्म से ही सिद्ध था। उसको कहीं वेद पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। अगर आपको मालूम होगा तो शास्त्रों में ऐसे लिखा है, व्यासदेव ने विवाह ही सिर्फ इसलिए किया कि मेरे को पुत्र उत्पन्न होगी जिसको मैं वेद पाठ और भागवत सुनाऊंगा। तो विवाह तो किया जाबाल की बेटी से, जाबाल ऋषि अथर्ववेद का है, उसकी बेटी से विवाह किया। लेकिन सुखदेव जैसे गर्भ में आया तो जन्म लेने को तैयार ही नहीं था। व्यासदेव ने कहा, बेटा अब तो आ जाओ गर्भ से बाहर। बोला, बाहर माया भगवान की मेरे को पकड़ लेगी। व्यासदेव ने कहा, तुम्हारा माया तुमको नहीं छुएगी बेटा। तो सुखदेव अंदर से कहता है, क्या माया आपके बस में है क्या? और व्यासदेव निरुत्तर हो गए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर प्रकट हो चुके थे। व्यासदेव श्री कृष्ण को लेके आए। श्री कृष्ण ने आकर सुखदेव को कहा, माँ के गर्भ में सुखदेव आप आ जाइए। बोला, माया? बोला, माया मेरी अधीन है, मेरी माया आपका स्पर्श नहीं करेगी। तब सुखदेव प्रकट हुए और होते ही चल दिए। न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न कोई संस्कार नहीं हुआ। क्यों संस्कार नहीं हुआ? संस्कार उसका होता है जिसमें विकार हो, उसमें कोई विकार था ही नहीं। आगे सुखदेव जा रहा है, पीछे व्यासदेव भागते हुए जा रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, कहाँ गया मेरा बेटा? पेड़ कहते हैं, ये तो सबके अंदर भगवान को देखता है, इसका आप पीछे आप कहाँ जा रहे हो? और आगे जाते हुए देखते हैं तो एक तालाब में नारियां नहा रही थी। सुखदेव नंगन अवस्था में उनके सामने से गुजर गए। नारियों के अंदर कोई भी भाव नहीं आया, लज्जा का भी जरा सा भी उनके अंदर लेश मात्र भी भाव नहीं आया। और पीछे व्यासदेव उनके पिताजी उन कन्याओं जो नहा रही थी उनके दादा के समान कपड़े पहने हुए जा रहे थे, नारियों ने वस्त्र ढक लिए। व्यासदेव को आश्चर्य हुआ, पूछा, बेटियों मेरा बेटा नौजवान 16 साल का आगे जा रहा है नंगन अवस्था में, उसको देखकर तो आपको लज्जा आई नहीं, साड़ी ढकी नहीं, मुझे दादे के समान कपड़े पहने हुए जाते को देखकर आपने कपड़ा क्यों ढक लिया? नारियों ने कहा, महाराज आपको प्रणाम है, आपका बेटा सुखदेव उसको ये भी पता नहीं है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, उसके लिए पेड़ पौधे पहाड़ स्त्री पुरुष सब समान है, उनको देखकर हमारे मन में कोई भी स्त्री पुरुष का विचार आया ही नहीं, लेकिन आप ग्रस्त आश्रम में रहते हैं आपको स्त्री और पुरुष के भेद का पता है, इसलिए आपके लिए आपके सम्मान में हमने वस्त्र को धारण किया। तो सुखदेव इस कोटि का महात्मा था जिसको संसार के किसी भी संसार में सबसे बड़ा बंधन का कारण तो है ही केवल स्त्री पुरुष, जब ये संसार में मिलते हैं तो फिर घर बनता है और घर बनता है वही कैद खाना बन जाता है, सबके रसे बंधे हुए होते हैं, सुबह एक रसा दुकान पे होता है खींच के उधर ले जाता है, शाम को दूसरा घर में खूंटा है वापस घर में आता है, बस दो ही जगह सुबह से शाम तक घूमता रहता है, बस ये अपने आप को बंधन में डालना है सीधा, ये संसार इसी को संसार बोलते हैं, और फिर ऐसे मोह जाल में फंस जाएगा कि वहां से निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। किसी ने फंसाया नहीं है, हमने स्वयं उसमें फंसने का, श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को एक उदाहरण दिया है कि जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, अपने अंदर से रेशम पैदा करता है, रेशम अपने अंदर से निकालता है, जब रेशम तैयार हो जाता है तो रेशम के कीड़े वाला आता है और उसको गर्म उबलते हुए पानी में डालता है, कीड़ा मर जाता है और रेशम लेके चला जाता है। ऐसे हम अपने पुत्र परिवार घर में अपने से सब कुछ पैदा करते हैं रेशम की तरह, लेकिन काल रूपी ताप आता है हमको तपा के ले जाता है और सारा माल पीछे बच्चे खाते रहते हैं। हम ही बनाते हैं, हम ही बनाने वाले। तो आप अभी तो ये जिस आश्रम में बैठा हो ये इस बात का प्रणाम है, प्रमाण है कि जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने घर भी बनाया, पुत्रों को पढ़ाया भी, वो घर से इनको निकाल दिया, ये यहाँ बैठे हुए नहीं तो कहीं और जाके इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ ही देखने को मिलेगा। जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सब कुछ किया वो यहाँ बैठे हुए हैं, और वो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो इनके माल के ऊपर मोह जुड़ा रहे, ये है कि नहीं? तो सामने दिखता है कि नहीं दिखता है? बूढ़ा आश्रम का अर्थ है कि नालायक बच्चे हैं, इसका अर्थ सिर्फ ये, इसको लिखना चाहिए नालायक बच्चों के बापों का आश्रम है। नहीं, जिस वेद की शिक्षा ये हुआ करती थी मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता तुम्हारे लिए देवता हैं उनकी जाके पूजा करना, आचार्य देवो भव तीसरे नंबर पे आचार्य आया करता था, अगर ये संस्कृति जिसमें जो थी उस संस्कृति का ऐसा हाल, ये अंग्रेज का शब्द है ओल्ड एज होम, ये वहां से आया है हमारे पास बीमारी, ये पाश्चात्य देश की बीमारी है और इसने असल में हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया, और बड़ा अच्छा मुझे थोड़े दिन पहले बहरीन में एक स्त्री ने कहा, डॉक्टर साहब उनके पति है, मुझे कहा कि मुझे नौकरी मिल रही थी यहाँ 1,00,000 रुपया हिंदुस्तान के पैसे के बराबर, लेकिन मैंने नौकरी नहीं ली क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मैं नौकरी करूँगी तो बच्चों को मुझे किसी आया के पास छोड़ के जाना पड़ेगा, तो अगर मैं अपने बच्चों को आया के पास छोड़ के जाऊंगी तो मेरे बच्चों को अधिकार है कि मेरे को ओल्ड एज में डाल के जाए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार अब बचपन में करूं कि बुढ़ापे में मुझे ही वो भोगना पड़े, मैं नौकरी नहीं करती हूं, बच्चे बड़े हो जाएंगे अगर करनी होगी तो भगवान को देना होगा तो देंगे, तो ये बहुत बड़ी समझदारी की बात है कि उंगली पकड़ के बच्चों को मंदिर में ले जाओगे तो बुढ़ापे में आपकी लाठी पकड़ के खड्डे में गिरने से बचाएंगे, तो बच्चों के संस्कार हमको देने चाहिए, वो जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिसका कोई नहीं होता है, कोई बात नहीं, आश्रम में उसका देखभाल होता है, मंदिरों में कोई बात नहीं, ये संभव है, किसी का कोई नहीं है, लेकिन जिसके सब कुछ हैं फिर भी छोड़ के जाए, ये अत्याचार है। और भागवत में इसी पहले स्कंद में आप पढ़ेंगे कि जहाँ वृद्धों का, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे और वृद्ध, इन पांच का जहाँ देखभाल नहीं होता है, वो संस्कृति आस्ते आस्ते नष्ट की ओर जाएगी। ब्राह्मण का इसलिए देखभाल होना चाहिए कि वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको संस्कृत और संस्कार की शिक्षा देगा। गाय की इसलिए रक्षा करनी चाहिए कि उसके दूध से, यज्ञ आदि से, भगवत प्रसन्नता से आपकी सब इच्छाएं पूरी होती है। स्त्री की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि सुयोग संतान उत्पत्त होगा, नहीं तो इस संसार के अंदर सारे वर्ण शंकर होंगे, अतिताई होंगे और आतंकवादी पैदा होंगे। और बच्चों की इसलिए सुरक्षा करनी चाहिए कि वो भविष्य के हमारे, भविष्य हम जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, उनको ठीक शिक्षा नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत दुखी हो जाएगी। और वृद्धों की इसलिए रक्षा करनी चाहिए कि वो अपने इस जन्म को सफल करके वापस भगवत धाम जाए। तो इन पांच की रक्षा नहीं करने वाला समाज बहुत जल्दी नीचे की ओर जाएगा, और हमारे पास इन पांचों की सुरक्षा अभी बिल्कुल नहीं हो रही है, न ब्राह्मण की हो रही है, न गाय की हो रही है, न स्त्री की हो रही है, न बच्चों की हो रही है, न बूढ़ों की हो रही है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जिस वक्त बच्चों को माता पिता के प्रेम की जरूरत होती है, जन्म से लेके 5 साल तक, इसलिए बच्चे की भाषा को मातृभाषा कहते हैं कि माँ की गोद में रहता है। लेकिन आजकल बच्चा 2 साल से पहले स्कूल में डाल के आना पड़ता है, क्योंकि हमसे संभाला नहीं जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि माता पिता के प्रेम से बच्चा वंचित हो गया, और उसी के कारण, उसी का परिणाम क्या निकलेगा आगे जाकर भविष्य में, सब माता पिता आज कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, एक ही काम हमको कहते हैं जब भी किसी के घर में जाते हैं, प्रभु जी मेरे बच्चे को शिक्षा दीजिए, आज्ञा नहीं पालन करते। अरे भैया तुमने प्रेम दिया नहीं, जब उसको प्रेम की जरूरत नहीं दिया, 5 साल तक बच्चा माता पिता की गोद में खेलना चाहिए। इसलिए पुरानी शिक्षा की पद्धति 5 साल के प्लस 5 होती थी, अभी तो इतना उधम मचा रखा है आतंकवादी स्कूलों ने, सबसे बड़े आतंकवादी आजकल स्कूल है, आदमियों के बाल रोज 2-4 गिरते हैं केवल पढ़ाई के खर्चा भरने के लिए, इतने महंगा पढ़ाई का खर्चा हो गया है। छोटे बच्चों बहुत ऐसा, ये पाश्चात्य संस्कृति वहाँ तो इसलिए उनको डालना पड़ता है कि पत्नी भाग जाती है, बच्चा गले पड़ता है, कहाँ बाप संभाले उसको, वहाँ को तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ हमारा ऐसा हाल थोड़ी है, उनकी देखा देखी क्यों करते हैं। आप सब जो बड़े बैठे हो, आपको 5 प्लस के बाद दाखिल किया था स्कूल में कि नहीं किया था, 5 प्लस के बाद गए, अभी भी आपने बच्चे पाले हैं कि नहीं पाले हैं? और ये जो 2 साल है ना, ये बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे, और पैदा करेंगे तो पालेंगे ही नहीं, देख लेना आप आगे चल के, पहले तो कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं है, शादी भी नहीं करेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे बदमाशों की तरह। अभी 35 साल तक लड़के शादी नहीं करते हैं, देखा है? अभी पढ़ूंगा, अभी MBA किया है, अभी थोड़ा सा ये BE किया है, अभी MBA करेगा। ये तेरी बीवी घर में है ना, ये तुम कांच की बीवी करेगा, MBBB करेगा किसकी बीवी करेगा पता नहीं, ये मियां बीबी MBA किया, 35 साल तक शादी नहीं करेगा, फिर कब शादी करेगा मूर्ख? 25 साल वेद ने कहा है शादी करने के लिए, तो सारी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। इसका कारण ये है कि भागवत को ठीक तरह से न कोई पढ़ता है न पढ़ाता है। प्रभुपाद जी ने इसी भागवत के अंदर एक जगह लिखा है कि विश्व के अंदर होने वाले आतंकवाद का दायित्व भारत के ऊपर है, इसका कारण भारत, क्योंकि भारत ने इसी भागवत की शिक्षा विश्व को नहीं दी। ये शिक्षा दिया होता तो संसार के अंदर ऐसा जो वातावरण हमको आज देखने को मिलता है ऐसा नहीं होता। हमने अपने कर्तव्य पालने में चूक की है, हम पाश्चात्य देश की संस्कृति के पीछे पड़ के, धन दौलत और दिखावे के पीछे पड़े, और अपने धन जो असली भागवत था उसको भूल गए, ना अपने बच्चों में वो संस्कार डाले, ना हमने पूरे विश्व को इस शिक्षा का प्रसाद दिया। और प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन देते हुए कहते हैं, मैं 70 साल का बूढ़ा भारत से इस सनातन धर्म के संदेश भगवत गीता और भागवत को ले गया, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया, 5 और नौजवान निकल के ये काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो पूरी दुनिया को हम हिंदुस्तान बना देंगे। आप केवल एक पाकिस्तान के लिए क्यों रो रहे हो, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। प्रभुपाद के ये वचन है कि पूरी दुनिया इस भारत संस्कृति, जो सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भागवत धर्म को बहुत गहराई से चाहती है लेकिन देने वाला नहीं है, देने वाले फिर जाते हैं पैसा कमाने वाले, इसलिए लोगों का इस संस्कृति के ऊपर विश्वास नहीं होता है। इसी श्लोक के भावार्थ में लिखा है कि भागवत को कहने का अधिकारी सुखदेव जैसा कोई वृक्त महात्मा होना चाहिए। भागवत कहने वाला कोई पैसे कमाने के लिए भागवत कथा करने वाले से, भागवत सुनने से उधार नहीं होगा। और आजकल भागवत विषय एक व्यवसाय हो गया है। वृंदावन के अंदर 3 महीने का कोर्स है, भागवत के 10-12 श्लोक याद करने हैं और कथा करनी है, और जगह जगह भागवत कथा हो रही है। इस कथा से भागवत धर्म का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि कथा करने वाला केवल अपने मन से कुछ बातें इधर उधर की बता के भागवत तो बताएगा नहीं। आपने भागवत में क्या देखा है? कृष्ण जन्म उत्सव, फिर रुक्मणी विवाह, फिर सुदामा के चावल, भागवत पूरी हुई, यही है। और कुछ पढ़ा है भागवत में? और कुछ सुना है? इन तीनों का उद्देश्य क्या हुआ है? कुछ लाओ कुछ दो। तीनों के पीछे एक ही उद्देश्य है कि रुक्मणी का जहेज में क्या दोगी, साड़ी अच्छी लाना, पंडित के घर में काम आए, ऐसे कोई बेकार से कार मत लाना, ऐसे पंडित जी बोलते हैं साहब। चावल सुधा में के सड़े फड़े नहीं लाना, अच्छे वाले लाना है, बासमती चावल। सुखदेव महाराज ने परीक्षित को भागवत सुनाई तब तो चावल वावल नहीं आए थे वह। तो ये कथाकारों की एक शैली चल पड़ी है, और लोग भी बेचारे बहुत भावुक हैं। लोगों की गलती नहीं है, लोग इतने दुखी हैं कि उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। मंदिरों के अंदर लाइनें लगी होती हैं बड़ी, क्यों? क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, जाते हैं मंदिर में कोई ना कोई हमारे दुख का निवारण हो जाए। ऐसे मंदिर जिसमें बड़ी बड़ी लंबी लाइनें होती, 4-5 घंटे दर्शन के लिए मिलते हैं, और दर्शन 2 मिनट का होता है, फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि लोग दुखी हैं। लेकिन जाके उधर मांगते क्या हैं? भगवान से, भगवान को नहीं मांगते हैं, दुख को कम करने के लिए कोई थोड़ा छोटा सा साधन मांगते हैं। बाहर आते हैं तब तक 2-3 दिनों का दुख खत्म होता है, फिर दोबारा दुख आ जाता है, दोबारा लाइन में लगते हैं। तो ठीक तरह से भगवान के पास जाना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान हृदय में आके भागवत सुनने से भगवान हृदय में आकर बैठते हैं, ये भागवत सुनने का उद्देश्य है। भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है? कि भगवान आकर हृदय में बस जाए। भागवत से निकलकर भगवान सुनने वाले के हृदय में बैठते हैं। ये पहले श्लोक में लिखा है, तत्क्षणात् अवरुद्धयते। जैसे घर से भागवत सुनने की इच्छा करके निकलते हो, उसी वक्त भगवान आपके हृदय में आकर अवरुद्ध होके बैठ जाते हैं। तत्क्षणात् उसी समय भगवान भागवत सुनने की वाले के हृदय में बैठना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाले की इच्छा भगवान प्राप्ति की होनी चाहिए, कृष्ण भक्ति की होनी चाहिए, भागवत का उद्देश्य है। तो इस श्लोक का भावार्थ काफ़ी लंबा है, आप इसको दोबारा भी पढ़ लीजिएगा, हम कुछ लाइनें पढ़ते हैं। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भागवत से पहले 4 वेद भी लिखे गए, महाभारत भी लिखा गया, उपनिषद भी लिखे गए, लेकिन फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। इसलिए भागवत में ये आपने पढ़ा है 2रा श्लोक, उसमें ये शब्द लिखे हैं। 2रे श्लोक के ये शब्द देखें, किम वा परेश्वर यद्य, और किसी शास्त्र की जरूरत ही क्या है? व्यासदेव ने जब भागवत लिखा तो सब शास्त्रों का फल लिख लिया, सार नहीं फल, तो फिर और किसी शास्त्र में पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तथा किम वा परई, और किसी को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या लिखा है यहां। अपने आप में ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये इसका अर्थ है कि अभी तक ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भागवत अपने आप में परिपूर्ण है और सारे शास्त्रों का फल है, और फिर ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में ये सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत, नवनीत किसको कहते हैं, मक्खन को, नवनीत मक्खन को बोलते हैं। तो गाय क्यों रखते हैं कि दूध मिले, दूध क्यों कि मक्खन मिले, मक्खन से घी बनेगा तब यज्ञ होगा तब भगवान की प्रसन्नता होगी तब संसार के, देखो एक दूसरा संसार के अंदर हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आजकल पानी का अभाव हो जाएगा, आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा, सुनते हैं आप लोग ये बात, हाँ पानी बहुत कम हो जाएगा, ये बोतल आई है 12 रुपये की, 12 रुपये किलो पानी बिकेगा, ऐसे कभी सुना था हा? लेकिन ये भी बदमाश लोग हैं। असल में पानी का कभी अभाव नहीं होगा, क्यों, इस धरती के ऊपर 3 हिस्सा पानी है समुद्र का, है कि नहीं है, और भगवान ने उसमें प्रिजर्वेटिव डाला है, खराब भी कभी नहीं होगा, समुद्र का पानी कभी खराब नहीं होता है, उसने भगवान में उसने प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। और भगवान ने एक बहुत बड़ा यंत्र बना रखा है, सूर्य के द्वारा खारे पानी को मीठा किया जाता है, कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है, कोई मोटर नहीं है, लेकिन खारा पानी एकदम ऊपर जाता है मीठा होता है और बादल से नीचे मीठा होकर बरसता है। ये कहाँ से आता है बरसात, और ये समुद्र का पानी है, लेकिन तो क्यों कम होगा पानी, समुद्र कभी समुद्र सूखेंगे क्या, आप मानते हैं कि कभी समुद्र सूख सकता है, अभी तो कहेंगे समुद्र बढ़ेंगे तब हम डूब जाएंगे, ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे समुद्र सूखेंगे, तो समुद्र नहीं सूखेंगे, सूरज उगना बंद करेगा क्या, नहीं करेगा ना, तो बरसात होनी चाहिए, फिर तो पानी आना चाहिए, कम क्यों होगा, कम इसलिए होगा कि हम यज्ञ नहीं कर रहे, इसलिए बरसात नहीं होगी, इसलिए अवृष्टि के कारण अनाज का उत्पादन नहीं होगा, समुद्र का पानी पी नहीं सकते हो इसलिए दुखी हो जाओगे, पानी खत्म नहीं होगा, तुमने अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया है इसलिए तुम दुखी हो रहे हो, इसलिए आप अपना संकीर्तन यज्ञ कलयुग का जो यज्ञ है ये करोगे तो समय के ऊपर वृष्टि होती रहेगी, कभी पानी का अभाव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने कर्तव्य नहीं करोगे तो इतनी ज्यादा वृष्टि होगी कि बाढ़ आएगी या बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अपने समय से ऊपर आप अपना कर्तव्य करोगे तो पानी का कभी अभाव होने वाला नहीं है दुनिया में, कभी भी नहीं होगा। ये दुनिया में एक दूसरा धोखा है सबको देने के लिए, बहुत बड़ा आजकल बड़े से बड़ा बिजनेस पानी बेचने का, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइज बिजनेस पानी बेचने का है, टैंकर बोतलें घर घर में बनाने का बड़ा आधुनिक नमूना शुरू हो गया, कुछ जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन हमको इतना बेवकूफ़ बना दिया, इतना हमारा दिमाग खराब कर दिया, बस अब पानी मिलेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप केवल भगवान का नाम शुरू लो लेना शुरू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई तो बरसात आने में कोई देर नहीं है, भगवान कहते मेरी इच्छा जब बरसात बरसाऊं, जब चाहूंगा तो बरसाऊंगा, तो भगवान कब चाहेंगे, जब भक्त चाहेंगे तो भगवान चाहेंगे, लेकिन भक्त कब चाहेंगे, भगवान कहेंगे संसार सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखी न, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते, वेदों के मंत्र सभी सुखी हों, लेकिन सुखी कैसे होंगे, जब भगवान की भक्ति करेंगे तब सुखी होंगे ना, तो सुखी सब होना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं अपनाना चाहते, तो काम ऐसे, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला मैं बीमार हूँ, बोला ये तुम्हारी दवाई है, ये खाने की गोलियाँ हैं, ये दवाई पीने की है, ये मालिश करने की है, बोला तुम्हारी फी कितनी डॉक्टर साहब, बोला 50 रुपये, बोला 100 रुपया लो दवाई भी तुम खाओ दवाई भी तुम खाओ डॉक्टर साहब। हम बोलते हैं आप कीर्तन करो, बोला प्रभु जी कीर्तन भी आप करो, हम करेंगे कुछ नहीं, हमारा काम होना चाहिए, ऐसे थोड़ी काम होगा भैया, आपको करना पड़ेगा ना स्वयं को, तो सबको करना पड़ेगा सामूहिक को, क्योंकि घर घर के अंदर कीर्तन होना चाहिए। प्रतिदिन घर के अंदर दो काम करो, एक जो भोजन बनता है वो भगवान को अर्पण करो, जब भगवान को 10 मिनट अर्पण होता है तब परिवार वाले बैठकर कीर्तन करो, बस ये दो काम करो, आपके सारे दुख एकदम शांत हो जाएंगे, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, खाने को भगवान का प्रसाद मिलेगा, घर में भगवान का कीर्तन होगा तो घर वैकुंठ जैसा हो जाएगा, सब कुंठ नाश हो जाएंगे, अपने आप शांति हो जाएगी। दो सरल भोजन तो सबको खाना ही है रोज, और झगड़ा करके बोलना तो सबको रोज है ही, वो खत्म करके भगवान का कीर्तन कर दिया करो, ऊंचा ऊंचा बोलना तो घरों में बंद नहीं हो रहा है, तो ऊंचा ऊंचा कीर्तन कर लिया करो तो फायदा हो जाएगा। तो सत्य इसलिए कभी हम कहते हैं आप आइए हमारे साथ कीर्तन कीजिए, आनंद में मगन होके नृत्य कीजिए, आपके सब सुख मिलेगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कैसे झगड़े खत्म होंगे? हम लोग कला घंटा एक कीर्तन करोगे, पसीना निकलेगा, थकोगे, फिर हम प्रसाद इतना खिलाएंगे आपको, आप घर तक जाते जाते नींद आएगी, झगड़ा कैसे करोगे? थक जाओगे तो झगड़ा कैसे होगा? तो भगवान के नाम लेने से सब शांति मिल जाएगी, इसमें करना क्या है? तो बहुत सरल सा सीधा साधन है। और जो 16 माला रोज जपेगा तो एक आदमी को रोज बोलने के लिए भाई 5-7-10 हजार शब्द बोलता होगा ना रोज, कितना बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो उसमें से कम ये तो 24 हजार शब्द तो ये हो जाते हैं हरे कृष्णा शब्द, तो बाकी कोटा ही खत्म हो जाएगी बेकार बोलने की, जितना जरूरी होगा उतना ही बोलेगा तो झगड़ा होगा ही नहीं, तो कम से कम कोटा तो अपनी पूरी कर लिया करो ना, बेकार बोलना बंद करो, केवल भगवान का नाम बोलो, नहीं तो कुछ मत बोलो, बहुत सरल सी बात है, करने इसका अभ्यास करके देख लो। तो ये श्रीमद् भागवत सारे शास्त्रों का सार है, ये सब दृष्टि में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो भागवत सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए। धैर्य क्यों लिखा है यहाँ? धैर्य का अर्थ ये है कि 9 स्कंद ठीक तरह से पहले सुने तब 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए। धैर्य का अर्थ है लड़के लड़की की शादी हुई, बोलो बच्चा, अरे बच्चा बाबा 9 महीने के बाद पैदा होगा, अरे नहीं नहीं हम तो अभी शादी हुई, बच्चा अभी कैसे होगा? 9 महीने के बाद फल मिलेगा, 9 स्कंद पढ़ोगे तब कृष्ण कथा सुनने का अधिकार होगा, ये धैर्य का अर्थ है, अभी का अभी नहीं हो सकता। तो लोग क्या, कथाकार क्या करते हैं, आप कभी पूछिए, मैं तो जानता हूं इसको, दूसरे स्कंद में क्या है उसका नाम भी नहीं लेंगे, 10 अध्याय पूरे लेकिन नाम नहीं लेंगे। तीसरे स्कंद में कपिल देव ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दे दिया, 3रा स्कंद पूरा हो गया। चौथे स्कंद में पृथ्वी महाराज का नाम लेंगे, पता नहीं लेंगे, बस आगे चल के 5वें स्कंद में एक नाम लेके सीधा एकदम नरसिंह भगवान आ गए। इतना दौड़ते हुए जाते हैं कि नाम भी नहीं लेते हैं, कि अध्याय का तो क्या, स्कंद का नाम भी मुश्किल से लेते हैं। 9 अध्याय धीरज से सुनना चाहिए, तब पता लगेगा भगवान होता क्या है, और उसके बाद भगवान के बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो धैर्य से, धैर्य का मतलब क्रम से इसको पढ़ना चाहिए, और निम्रता, निम्रता का अर्थ क्या है कि भागवत साक्षात भगवान है, इसलिए उसको सुनने के लिए हमारे अंदर निम्रता होनी चाहिए, निम्रता से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करे। ग्रहण करना, ग्रहण करे, सुने नहीं लिखाए, ग्रहण करे। ग्रहण करने का अर्थ क्या है? ग्रहण करना मुश्किल है, सुनना आसान है, सुनना कान से होता है, समझना दिमाग से होता है, ग्रहण दिल से होता है। कान से तो सब सुन के जाते हैं लेकिन दिमाग से समझते बहुत कम लोग हैं, और समझने वालों में भी ग्रहण बहुत कम करते हैं, तो ग्रहण करने में बहुत चेष्टा होती है। इसलिए एक शब्द भागवत में आएगा 2रे स्कंद में, ग्रहणत स्वचेष्टितम, चेष्टा करके ग्रहण करना चाहिए। चेष्टा का अर्थ क्या होता है? चेष्टा, आप कहते हैं चेष्टा करने का मतलब जरा जोर लगाना पड़ेगा समझने के लिए पहले, और समझ भी आ जाए लेकिन करना पड़ेगा, तो करता है आदमी दिल से, समझता है दिमाग से, सुनता है कान से। तो सुनने के लिए कान केवल पर्याप्त नहीं है, श्रवण केवल कान से नहीं होता है, मनन मन मनन होता है दिमाग से, मन से, और फिर निध्यासन होता है हृदय से। इसलिए सुनने में भी परिश्रम है, सुनना भी आसान नहीं है। गर्मी के मई जून के महीने में राजस्थान में चूल्हे के ऊपर रोटी बनाकर पत्नी ने पसीने से अपने पति के सामने थाली में परोसा, एक हाथ से पति को मुंह में ग्रास दे रही है, दूसरे हाथ से पंखा भी चला रही है, फिर भी पति को पसीना आ रहा है। तो पूछती है, गर्मी में पकाई मैंने, खिला मैं रही हूँ, पंखा मैं झेल रही हूँ, आपको पसीना क्यों आ रहा है? बोला, चबा तुम्हारा बाप रहा। हाँ, चबा कौन रहा? तो चबाने से भी तो पसीना निकलता है ना। तो वेद व्यास ने बैठ के भागवत को लिखा, सुखदेव ने बैठ के सुनाया, प्रभुपाद ने बैठ के अंग्रेजी भाषा में लिखा, फिर भक्त कहाँ कहाँ से आके आपको सुनाते हैं, लेकिन बैठ सुनने में भी पसीना होगा। ये सारा व्यवस्था लिखना किसने किया, पढ़ना किसने किया, आपको केवल सुनना है लेकिन इसमें भी पसीना है, ये भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। तो ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहण करने का मतलब है, भागवत कहती है कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तो जप करना चाहिए दिल से, केवल सुन के समाप्त नहीं होता है, करना चाहिए, समझना चाहिए। सुनना, समझना, करना, तीन श्रवण के अंतर्गत हैं, कान, दिमाग और दिल। तो दिल से जब करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, केवल सुनने से। ये सुनना ऐसे है, कोई आदमी खांसी होती है, बुखार आया है, डॉक्टर के पास जाओ, अरे भाई हाँ गया था डॉक्टर के पास, दवाई लाओ, बोला हाँ दवाई डॉक्टर ने लिख के दी, बड़ा अच्छा डॉक्टर था, 300 रुपया फीस थी उसकी, देखो ये बिल, दवाई ये 500 रुपये की स्टोर से लाया हूँ, अरे खांसी तो तुम्हारी गई नहीं, तो नहीं मैं डॉक्टर को दिखा के आया, अच्छा दवाई हाँ लाया, अरे फिर बुखार क्यों नहीं उतरा, तुमने दवाई खाई, बोला वो तो नहीं खाई। तो डॉक्टर को पास अस्पताल से घूम के आया, स्टोर से दवाई को देख के आया, तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा क्या? खाएगा तब उतरेगा ना, कथा में गया था, हाँ गया था, प्रसाद खाया, हाँ खाया बहुत, अरे महाराज ने कहा था हरे कृष्ण जपना, बोला वो तो नहीं हुआ। तो उससे खांसी तो नहीं जाएगी, बुखार नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा, लेकिन बीमारी जाएगी तब जब स्वयं करेंगे कुछ, दवाई खाएंगे तब ठीक होंगे ना। नहीं, ये तो भागवत रूप, ये भी तो दवाई है। प्रभुपाद कृष्ण ने एक बार बोला, आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं, अस्पताल बनाइए। प्रभुपाद ने, किसने बोला मैं मंदिर बनाता हूँ, तो अस्पताल बनाया है, ये मानसिक रोगी लोगों के लिए अस्पताल है, यहाँ जब आएंगे तो भगवत भक्ति से उनका जीवन सफल हो जाएगा। हमारे भक्त डॉक्टर हैं और हमारे मंदिर अस्पताल है। प्रभुपाद ने कहा ये बड़े अस्पताल है, ये मानसिक रोगियों के अस्पताल है, लोग मानसिक रोग से ज्यादा ग्रस्त हैं आजकल, हम इस मंदिर थोड़ी बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं। तो ये बात है कि सुनने में भी बहुत ज्यादा चेष्टा करनी पड़ती है। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्यों के लिए गैर सारी बातें पाई जाती हैं, उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन होता है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सा, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों के संबंध में ज्ञान मिलता है, वेदों में सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ के पीछे असल में है भगवान को प्राप्त करना, तो वो जो अंतिम लक्ष्य है उसको वेदों के अंदर ढूंढ के निकालना है। वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं सारे वेदों के द्वारा मेरे को ही जानना लक्ष्य है वेदों का। लेकिन लोग वेदों को सिर्फ कर्म कांड तक ही समझ के अपना काम पूरा कर देते हैं। इसलिए वेदों में है तो सब कुछ, संसार की जरूरतों के लिए भी है और भगवत प्राप्ति के लिए भी है, लेकिन हमको बुद्धिमानी से उसमें भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को भी देखना चाहिए। तो इसमें ये अगली बार आप लोग इसके भावार्थ को ठीक तरह पढ़ लेना। मेरे ख्याल में समय कितना हो गया, तो यहाँ इस कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है अथवा कोई जिज्ञासा है? 50 मिनट हो गए हैं, 50, हाँ 10 मिनट के लिए अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। ये श्लोक भागवत के महात्म्य का श्लोक है और इसमें हम सबको प्रेरणा दी गई है कि हम विचारवान होकर भागवत का रस प्रतिदिन पिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन के लिए यह श्लोक है, नित्यम भागवत सेवया, नित्य रोज भागवत का सेवन करना चाहिए। किससे? भागवत पुरुष से। जो भगवान का भक्त हो उससे भागवत सुननी चाहिए। जिसका उद्देश्य हमारे जीवन में भगवान की भक्ति भरना हो, हमारे जीवन में भगवान को ला के जो भक्ति भगवान की और भगवान को ला सके, उसके साथ बैठ के भागवत को सुनना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न और जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। अवेश है, अभी क्या लेने वाला? किसी कोई प्रश्न है? 1 घंटा हो गया जी। कोई जिज्ञासा छे मात जी आपका भैया?